ओम शांति। एक कहानी है, उस कहानी में दिखाते हैं कि एक देश के महाराजा थे, तो उन्हों को कोई संतान नहीं था। उनको वो थोड़े वृद्ध भी होने आए हैं, तो उनको अंदर चिंता भी थी कि मैं किसको राज्य कारोबार का भार दूं। इसलिए उसने एक कंपटीशन रखी थी और देश विदेश जो भी जहाँ भी जितने भी देश विदेश के जहाँ के भी राजा थे उसको उसने निमंत्रण दिया था। और निमंत्रण में ऐसा था कि जिस जगह पे उन्हों को रखा था वहाँ से वहाँ आने में एक घंटे की देरी होती थी और उस राज्य पद की सीट रखी थी वहाँ, और सीट में जाने के लिए सिर्फ एक ही घंटा, लेकिन उन्होंने मार्जिन 5-6 घंटे की रखी थी। लेकिन 5-6 घंटे की जो मार्जिन रखी थी उसमें उसने सभी को ऐलान किया था कि एक ही घंटे में अगर इस सीट को जो भी चाहे कोई भी हो अगर वहाँ पहुँच जाता है तो राज्य पद के अधिकारी हो सकते हैं। तो उन सभी ने बोला कि 5 घंटे हमको इतना मार्जिन दिया है तो बहुत सहज है। लेकिन राजा ने क्या किया था, उस पांच जो रास्ता था उस रास्ते में उसने बहुत सारी चीजें रखी थी, बहुत सारी चीजों में खाने पीने की चीज, पहनने की, ओढ़ने, बहुत सारी चीजें रखी थी कि जो इतनी चीजें रखी थी, गहने इतने रखे थे, वस्त्र इतने बहुत अच्छे अच्छे रखे थे, जैसे स्टूल रखे थे, और रास्ता ऐसा सीधा था लेकिन उसमें गलियां थी, उस गलियों में उसने बहुत सारा सामान रखा था और इतना सामान कि तो फिर सभी ने शुरू किया। जब भी तो सभी जाने लगे तो पहला जो स्टॉल आया था उसमें बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र थे, इतने सुंदर वस्त्र, एक छोड़ो और एक लो, इतने सुंदर वस्त्र थे। तो लोगों ने देखा कि अभी तो 5 घंटा है, कोई बात नहीं है। तो धीरे धीरे देखते 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 कोई, वो बहुत सारे साधन सामग्री थी, बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र थे, तो कोई उसमें रुल गए, कोई खाने पीने की चीज़ों में रुल गए, कोई गहने थे, उन्होंने बताया था जितना ले सकते वो भी ले सकते हैं, आप जितना चाहो उतना आप ले सकते हो, उसमें खुली छूट है, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि आपको 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाना है, टाइम मुकर्रर था। तो सभी उसमें उलझ गए, तो इतने सारे उलझ गए सभी लेने में, क्योंकि कभी किसी ने इतना सुंदर इतना देखा नहीं था। तो देखते 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 आपको पता है कोई मॉल में जाते हैं तो कितने घंटे लग जाते हैं चीजें वस्तु देखने में, तो ध्यान नहीं रहता है, वहाँ कोई घड़ी नहीं रखी थी। तो फिर जाते जाते सभी वहाँ उलझ गए, राजा को चिंता होगी कि अभी तो कोई नहीं है। तो तभी एक सन्यासी था, उसने 1 ही घंटे में कहीं भी नहीं देखा, 1 ही घंटे में जाके सीट पे सेट हो गया। तो राजा ने उसको मुकुट पहना दिया। तो कहने का मतलब कि सर्व प्राप्ति, आज की जो मुरली है, संधि की मुरली है, उस मुरली है उसमें जो मेला तो होता है लेकिन ये रूहानी विचित्र मेला है और उसमें सर्व खजानों की प्राप्ति है। तो बाबा कहते हैं कि मैं मिला हूँ और बाबा अब हमें मिला है, बाबा सर्व प्राप्तियों का सागर है, वो मिला है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा ना हो कि सारा संगम बीत जाए और आप एक ही एक चीज लेकर के ही वापस मतलब कि घर पहुंचो, ऐसा नहीं। इसलिए आपको सर्व प्राप्तियां प्राप्त करनी है, क्योंकि बाबा दाता है, दाता के पास कोई कमी नहीं है। इसलिए ये मेला जो है उसमें सब कुछ, क्योंकि संगम है ही मेला, मिलन मनाने का मेला है। तो ये मेला जो है उसमें विशेषता क्या है, तो ये रूहानी मेला है, उसमें बाबा कहते हैं कि जो मिलन मनाने के लिए आए हैं सभी बच्चे, जो भी मिलन मनाने आए हैं, तो वो कैसे आते हैं, क्या होता है, तो इतना दौड़ दौड़ के आते हैं, तो उस लगन होती है कि बाबा मिलेगा, और उसके लिए भी हमारी तड़पन होती है, सबको होता है कि हम आगे आगे जाएं, सीट हमको आगे मिल जाए, कोई भी सीट खाली होती है तुरंत वहां हम जाते हैं, तो ये लगन होती है। दूसरा है कि मिलन मनाना जो विचित्र मेला है उसमें विशेषताएं क्या है, सबसे पहली विशेषता है कि विचित्र मेला है। विचित्र मेला मतलब कि ऐसा मेला जो भी मेले होते हैं उसमें सब कुछ दिखाई देता है, उस मेले में जो मिलने वाले और मिलन मनाने वाले दिखाई नहीं देते हैं। विचित्र माना जिसको बाबा का जो मिलन होता है आत्मा का आत्मा से मिलन है। दूसरा है कि विचित्र आत्माएं मीन्स शरीर नहीं है और विचित्र बाप से मिलती है। बाबा ने कई बार बताया है कि ये सागर और नदियों का मेला है, तो सागर भी नहीं दिखाई देता है, नदी भी नहीं दिखाई देती है, लेकिन कौन सी नदियां हैं? बाबा कहते जो भी आत्माएं हैं वो सब नदियां हैं और सागर एक बाप है। फिर ये जो परिवार है, जैसे वो उस मेले में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन किसी को अपना परिवार नहीं समझते हैं, लेकिन ये ईश्वरीय परिवार है। आपको मालूम होगा कि कोई भी व्यक्ति कहाँ भी आप जाओगे, कोई कितनी भी भीड़ में होंगे और उसने सफेद कपड़े भी पहने और बेज पहना है तो तुरंत आप मुस्कुराओगे, आपको तुरंत फीलिंग आएगी कि अपना परिवार का है। और ये मेला एक ही बार होता है, वो मेले तो बहुत बार होता है, ये मेला एक ही बार होता है। और एक ही बार जो मेला होता है उसमें बाबा कहते सर्व प्राप्तियां, संगम में एक ही बार जो मेला है उसमें बाबा सब कुछ देख करके जाता है। बाबा ने कहा मैं 3/4 सुख देता हूं। और आपको सभी, हम सभी को मालूम भी है एक अंतिम जो जन्म है हमारा कैसा है, कोई इतना इतना खराब नहीं है, अच्छा है, तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट जन्म कितना अच्छा होगा। तो ये मेला एक ही बार मतलब कि होता है, लेकिन ये मेला कैसा है, ये मेला, वो मेले में तो कुछ खो भी जाता है, कुछ रुल भी जाते हैं, लेकिन ये मेला कैसा है, प्राप्तियों का मेला है। तो इस मेले में क्या क्या प्राप्तियां होती है, प्राप्तियां होती है उसमें क्या क्या प्राप्तियां होती है? इस मेले में जैसे उस राजा ने खुला भंडार रखा था वैसे बाबा ने भी खुला भंडार रखा है। और कैसा है, खुला खजाना है, क्योंकि बाबा दाता है, उसको ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट आया हो सब कुछ लेके जाएगा, नहीं, उनके पास इतना है, दाता की देन इतनी है कि हर कोई व्यक्ति जितना चाहे उतना वो ले सकता है। तो उसमें उसमें खर्च करने की भी बात नहीं है, उसका पैसा देने की भी बात नहीं है, लेकिन बात क्या है कि जितना चाहिए वो ले सकता है। दूसरा है कि हर मेले में लॉटरी होती है, जैसे वो मेले में भी लॉटरी के टिकट वाला स्टॉल होता है, बाबा कहते हैं ये भी लॉटरी है। कैसी लॉटरी है, ये लॉटरी है, बाबा कहते हैं ऐसी लॉटरी है, और इतनी लॉटरी ऐसी है जो उस लॉटरी में तो पहले पैसा खर्च करते हैं उसके बाद लॉटरी की टिकट मिलती है और राह देखनी पड़ती है कि कब हमारा नंबर आएगा। उसमें भी किसी का नंबर आता है किसी का नहीं आता है, लेकिन ये लॉटरी कैसी है, ये लॉटरी सबको मिलती है। इस मेले में लॉटरी है भाग्य की लकीर की लॉटरी है, और वो भाग्य की लकीर की लॉटरी में ऐसा भी नहीं है कि आप 20 साल से चलते हो, 40 साल से चलते हो, 60 साल से चलते हो, वो कंडीशन नहीं है। लेकिन ये भाग्य की लकीर कैसी है, बाबा ने कर्मरूपी, जो कर्मरूपी कर्म करने की जो विधि सिखाई है, श्रेष्ठ कर्म करने की जो विधि है, उसके ऊपर हमारी भाग्य की लकीर खींचने का आधार है। तो ये लकीर है, लॉटरी की लकीर कैसी है, यहां बताया है कि सेकंड में ले सकते हैं। वो लॉटरी लेने के लिए तो उस दुकान में जाना पड़ेगा, स्टूल ढूंढना पड़ेगा, ये तो सेकंड में लॉटरी की टिकट मिल सकती है। लेकिन इसमें बाबा ने कहा भाग्य की लकीर भी है, भाग्य की लकीर माना जितना चाहो उतनी लंबी लकीर खींच सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि उसने अभी लंबी लकीर खींच ली तो मैं क्या करूंगा, ऐसा भी नहीं है, अफसोस नहीं है। तो भाग्य की लकीर खींचने का कौन से किस द्वारा खींचेंगे, श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन दृढ़ संकल्प। अगर आपमें दृढ़ संकल्प है कि मुझे बहुत सारे सबसे आगे जाना है, तो अगर दृढ़ संकल्प है तो बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प जब करते हैं तो उसमें विजयी सफलता मिलती है। तो दृढ़ संकल्प द्वारा जितनी खींचनी चाहो उतनी लंबी भाग्य की लकीर खींच सकते हो। फिर इसमें सीट भी है, जैसे सीट होती है, कौन सी सीट है, राज्य पद पाने की सीट है। वो सीट ऐसी है कि जो भी व्यक्ति, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, उस बाबा के बच्चों में से कोई भी बच्चा वो सीट ले सकता है। उसमें वर्तमान की बातें नहीं है कि वर्तमान में अगर कोई बहुत बड़ी सीट पर है वही फर्स्ट नंबर आएगा, ऐसा नहीं है। एक बार बाबा ने, जब भी बाबा के सामने बहुत सारे लोग आए थे तो दादी ने पूछा था, बाबा अब तक आपने 108 की माला तो दिखाया नहीं, क्योंकि कौन कौन है उसमें दिखाओ, बाबा ने बताया। तो बाबा ने बोला कि नहीं, वो तो आपकी, आपके जो दिखते हो, आपके दिल में जो भी है वो बाबा के दिल में नहीं है, और बाबा के दिल में जो है वो आपको मालूम भी नहीं होगा। तो इतना गुप्त है, ऐसा नहीं कि ये मधुवन में जो रहते हैं या मधुवन सेंटरों में रहते हैं, या ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा इतने सारे करोड़ आपने कभी किसी को देखा भी नहीं, उसका भी नंबर आ सकता है। तो बाबा के लिस्ट में बाबा पूरे विश्व को देखता है और पूरे विश्व को देखते हुए नंबर देता है। दो सीट तो कौन ले सकता है? तो बाबा ने कहा कि जन्म जन्म के विश्व की राजाई सीट लेने के लिए जितनी बड़ी सीट, वो सीट चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस क्या है कि सभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उस गोल्डन चांस का अधिकारी हो सकता है। तो उस गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस क्या है? गोल्डन चांस है, दिल से कहो, क्या कहो? मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा तो अब दिल तक तो नशीन बन जाएंगे। तो एक बार कहने से नहीं, लेकिन सारे दिन में अनुभव हमको हो, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से बोल दो मेरा बाबा, नहीं, दिल से अगर निकलता है, जितनी बार निकलता है बाबा कहते उतनी हम दिल तक तो नशीन बनते हैं। तो फिर कोई कोई मेला जो होता है गिफ्ट भी रखते हैं, और बाबा का तो यहाँ एक ब्राह्मण, हमारा ब्राह्मण संसार में तो गिफ्ट, जो भी नए आते हैं, जो भी पहली बार आते हैं, जो भी आते हैं ब्राह्मण बच्चे, उनको बाबा गिफ्ट देता ही है। तो ये स्थूल गिफ्ट है, ये सूक्ष्म गिफ्ट है। तो कौन सी विशेष गिफ्ट है? छोटा सा सुखी और संपन्न संसार। क्योंकि हमारा संसार में कौन है? बाबा कहते हैं आपके संसार में कौन है? एक बाप है और बच्चे हैं, बाप और बच्चे। बाप और बच्चे के सिवाय संसार में कोई नहीं है। जितने भी है वो सब बाबा कहते हैं कि सभी आत्माएं हैं और आत्माओं का पिता एक ही है। तो छोटा सा संसार है, लेकिन ब्रह्मा बाप के नाते से भाई बहन है, तो वो भी छोटा सा संसार है। इसमें कोई कोई किसी का मात पिता, कोई किसी का भाई बहन लोग बनाते हैं कि मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। बाबा कहते हैं कि ये संसार संसार नहीं है, लेकिन बाबा का संसार संसार है। तो गिफ्ट मिलती है विशेष, और जिस संसार में, इस संसार कैसा है? बाबा का संसार, जो चाहो वो मिल सकता है और सदा ही प्राप्त है। और संसार में छोटा सा संसार तो है, लेकिन बाबा कहते हैं प्राप्तियां कितनी है। आप अपनी प्राप्तियों को देखो, दुनिया की प्राप्तियों को देखो और अपनी प्राप्तियों को देखो। दुनिया कहाँ है? दुनिया में दुखी दुख है ना। यहाँ अगर बाबा के जो बच्चे बनते हैं, तो यहाँ बाबा की जो, बाबा की हम ज्ञान में चलते हैं तो बहुत सारे साधन मिलते। कौन से साधन? सूक्ष्म साधन है, ड्रामा है। फिर बाबा ने हमको जन्म जन्म की कहानी सुनाई है कि आप क्या बनने वाले हो, आपका भविष्य क्या है। तो हम अपने को देखते हैं और दुनिया को देखते हैं। दुनिया वालों के पास इतने सारे साधन है, तो साधन होते हुए भी दुखी है। जब भी मैं अहमदाबाद में थी, तभी हमारे वहाँ जो ऑफिस में मैं सर्विस करती थी, वहाँ बस लड़कियाँ होती थी। तो लड़कियाँ बहुत, मतलब कि अच्छी रीति से रहती थी। तो एक लड़की बहुत सुंदर थी और उसकी शादी हुई, तो इतना सारे गहने पहन कर के आती थी, बहुत सारे गहने पहन करके आती, इतनी सजी सजाई बन करके आती थी। तो सभी बहुत देख करके खुश होते थे। तो हमने एक बार उसको बोला कि तुम इतना सारे गहने पहन करके आई हो, इतनी सुंदर, तुमको गाड़ी में छोड़ने आते हैं। तो बोले मेरे जितना दुखी कोई नहीं है। मैं को क्यों? कहते हैं जबरदस्ती से पहनना पड़ता है, जबरदस्ती लाली लिपस्टिक लगानी पड़ती है, तो ये समाज के कारण, घरों के कारण। तो हमें लगता है कि वो बहुत सुखी है, लेकिन अंदर से बहुत ही दुखी होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो संसार है, बाबा का संसार, हमारा संसार, उसमें बहुत ही, जितनी कंपैरिजन हम करते हैं दुख और सुख की, तो हम बहुत ही, उन लोगों के कंपैरिजन में हम बहुत ही सुखी हैं। फिर यहाँ मेले होते हैं ना, उसमें झूले बहुत होते हैं ना, झूले खेलने के साधन होते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ भी झूला है। कौन सा झूला है? अतिंद्र सुख का और सदा ही प्राप्तियों का झूला है। प्राप्तियां हैं, प्राप्तियां हैं। बाबा ने कहा था एक बार बाबा कहो तो एक के पीछे एक जीरो लग जाएगा। दूसरी बार बाबा कहो तो उसके पास और जीरो। तो हम कितनी कमाई करते हैं, पदम पदम की कमाई करते हैं, इतनी कमाई कर सकते हैं। और ये जो कमाई है उससे क्या होता है, खुशी भी मिलती है। तो खुशियों के खुशियों का झूले में झूलते हैं। दूसरा है, कौन सा झूला है, अलौकिक झूले हैं, है ना, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है कौन सी किस प्रकार से वो रहते हैं, कितने आनंद में रहते, कितने खुशी में रहते हैं। तो उनको हमारी जो खुशी है, हमें रहते हैं यहाँ तो मालूम नहीं पड़ता, लेकिन बाहर से जो आते हैं ना वो हमें देख के खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, आपने देखा होगा और सोचा भी होगा, लोगों के चेहरे, दुनिया वालों के चेहरे और ब्राह्मण परिवार के चेहरे में कोई अंतर दिखाई देता है, तुरंत ही मालूम पड़ता है कि ये हमारा परिवार का है, मालूम पड़ता है। तो कपड़े पहनने से नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर ही एक रौनक आ जाती है, एक दिव्य एक आभा आ जाती है। तो तीनों ही जब प्राप्तियां मिलती है, तीनों ही झूले में झूलते हैं, तो एक और ही हमें एक प्राप्ति होती है, वो है बाबा कहते हैं उड़ती कला में जाने का। क्योंकि धीरे धीरे हम जो पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी ये देह रूपी मिट्टी है, उससे हम धीरे 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 उससे ऊपर हो जाते हैं और उड़ती कला में जाते हैं। तो इस संसार में रहने वाला, इस संसार में रहते रहते, ब्राह्मण संसार में रहते रहते, शुरुआत में उसकी होती है, जैसे कोई सागर होता है, कोई नदी होती है, उसमें हम पहले नाव में पांव रखते हैं। नाव में पांव तो रख दिया है लेकिन हम मंजिल तक पहुंचे नहीं है, लेकिन नाव में बैठे हैं। तो नाव में बैठे हैं तो धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते हम इस मंजिल पर पहुंचते हैं जहां देही अभिमानी बनने की हमारी मंजिल चालू हो जाती है। मंजिल चालू है क्योंकि हम नाव में बैठे हैं, हम उस पार अभी पहुंचे नहीं है। तो सबका अपना अपना पुरुषार्थ होता है। तो मिट्टी के मेलेपन, मिट्टी का मेलापन क्या होता है, देह अभिमान ऐसा है जो रग रग में हमें भरा हुआ है, कहाँ कभी कैसे देह अभिमान आ जाएगा मालूम नहीं है। कितना भी पुरुषार्थ करते हैं, कितने जन्मों का संस्कार है, 63 जन्मों का संस्कार है। 2500 साल तक हम देह में रहे, 2500 साल तक का मेल है, वो एक दिन में दो दिन में नहीं जाता है, कितने भी साल में। लेकिन हमें निरंतर पुरुषार्थ करना है आत्माभिमानी रहने का। तो जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हमें देह रूपी मिट्टी से ऊपर उठते जाएंगे। दूसरा है कि बाबा कहते हैं उसमें खेल भी है, खेलना भी होता है। तो वहां तो कैसा कैसा खेल होता है, कोई कोई तो खेल बहुत ऐसा होता है जो मरने जीने का सवाल हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ खेल कौन सा है, किस से हम खेलते हैं, ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। ज्ञान रत्न हमारा खेल का साधन है। जब भी हमारे जीवन में कुछ तकलीफ होती है, आप एक मुरली पढ़ लो, अभी एक तो मुरली, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमको एक प्राण हो गया। एक बहन आई थी, उन्होंने हमको बोला था कि मेरे जीवन में बहुत ही तकलीफें होती हैं, ज्ञानी थी, बहुत समय से चलती थी। तो उस समय है ना मेरे पास ट्रामा की एक बुक्स आई थी एक भाई की, तो मैंने उसको दे दिया, मैंने बोला पढ़ो। तो उसने है ना, मैंने बोला धीरे धीरे एक एक पेज पढ़ना। उसने 10 दिन में पूरी ड्रामा की बुक पूरी हुई, छोटी सी थी 25-30 पेज की। तो उसके बाद उसके ऊपर रौनक आ गई। मैंने बोला क्या हो गया, बोला बाबा ने कितना कितना समझाया है। तो बाबा ने जो समझाया, ड्रामा की पॉइंट समझाई है कि वो ड्रामा कैसा है, ड्रामा बाबा को पसंद है तो हमको भी पसंद होना चाहिए, और ड्रामा कैसा है, वो ड्रामा अकल्याणकारी है, अकल्याणकारी हो ही नहीं सकता। हमने इतने जन्मों में जो भी किया है, जो भी कर्म किया है, उस कर्मों का बाबा ने हमें फल दिया है। और खुशी इतनी होनी चाहिए, बाबा कहते हैं हमने देखा था कि खुशी, ज्ञान मिलने से खुशी कितनी होती है, क्योंकि हमारा हिसाब किताब चुकत होता है। आपने देखा होगा कि एक संजय भाई था जो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उसको कैंसर हो गया था। तो उसके उसके जबान में से, उसके मुख में से हमेशा बाबा 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 बाबा। तो लोगों को लगता था, हमको भी लगा कि इतना उसको कितनी तकलीफें हैं तो भी वो बाबा को भूलता नहीं है और खुशी खुशी। क्यों ऐसा हुआ, उसको दर्द की महसूस जरा भी नहीं उसको महसूस नहीं होती थी, फैल गया था। हाँ, लेकिन उसने क्योंकि वो खुशी खुशी, उसको मालूम था कि मेरा हिसाब किताब चुक्त हो रहा है, जितना जितना चुक्त होगा उतना उतना मैं मतलब कि खुशी में रहता था। तो खुशी ऐसी है जो कितने भी कर्म भोग हो, सूली जो होती है उसको कांटा बना देती है, मतलब इतना खुशी का हमारे पर प्रभाव। तो बाबा का ज्ञान का प्रभाव, तो ज्ञान रत्नों से खेलना, खेलना माना कि हमेशा हमको यहाँ होमवर्क देते हैं, कुछ भी देते हैं तो कहते हैं कि मंथन करो, मंथन करो, विचार सागर मंथन करो। बाबा की हर मुरली में होमवर्क आता है, बाबा की हर मुरली में हमको बताता है आपको ऐसी बातें मेरे से करनी चाहिए, बातें कैसे करना वो भी बाबा हमको बताते हैं, बाबा से कैसे कैसे मतलब क्या क्या संबंध निभाना वो भी बाबा बताता है। तो हर प्रकार की बातें हमको सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि खेलते कैसे हैं, सदा ज्ञान रत्नों से खेलना है। लेकिन यहाँ बाबा के जो भी हम आए हैं यहाँ, तो सबको अनुभव होता है, अनुभव के बिना 20 साल 30 साल 40 साल चल नहीं सकते हैं लोग, चल सकते हैं। तो अनुभव हर एक को अपना अपना एक अनुभव होता है। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो बाबा को याद करते हैं, परिस्थिति धीरे धीरे कम हो जाती है, परिस्थिति का फिर वो परिस्थिति पार कर लेते हैं, तब सोचते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा मैंने पास कर ली, कैसे पास कर ली। बहुत बहुत बाबा के ज्ञान में जो भी बच्चे आते हैं, कोई भी बाबा का बच्चा बिना एग्जाम नहीं हो सकती है, कि एग्जाम होती ही है, छोटी मोटी एग्जाम आती है और ये एग्जाम अनुभव करते करते आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ अनुभव है, किसका अनुभव है, बाबा का साथ का अनुभव। बाबा के साथ का अनुभव माना, बाबा कहते हैं कि आप अनुभव की अथॉरिटी बनो, ज्ञान की अथॉरिटी बनो। तो बाबा के साथ का जो अनुभव होता है, हमने माताओं को देखा है, वो जैसे भोजन बनाती है तो बाबा 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 करती है। तो हर हर उसके सुबह से रात तक, कई माताएं बहुत बांधेली होती है तो हमने देखा है, उतनी ही उसकी तड़पन होती है, लेकिन जैसे वो छुटेली हो जाती है उतनी तड़पन उसमें नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं संबंध की प्रीत, बाबा के साथ हमारे कितने संबंध है, जो भी संबंध है वो सारे संबंध का हमें अनुभव करना है। और ये अनुभव की अथॉरिटी ऐसी है, कैसी है, अनुभव कभी भूलता नहीं है। अब आपका कोई ऐसा अनुभव किसी को सुनाएंगे तो व्यक्ति भी अनुभव सुनते सुनते वो अनुभवी मूर्त बन जाती है। इसलिए बाबा ने यहाँ संगठन रखा है। ये संगठन क्यों रखा है, विद्यालय जितने सेंटर्स रखे क्यों रखे हैं, क्योंकि एक दूसरे के अनुभव से भी बहुत सीखते हैं। दूसरा है कि बाबा की हम ज्ञान में चलते हैं तो बहुत एक बहुत बड़ी बात है, उसमें श्रीमत है। बाबा की श्रीमत तो हमको बहुत ही, कितनी श्रीमत, बहुत सारी श्रीमत के पॉइंट्स है, लेकिन वो श्रीमत हम एक दिन में नहीं कर सकते। लेकिन बाबा की मुरली में जो श्रीमत आती है, आज के दिन में जो श्रीमत आती है, अगर उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, तो अगर एक श्रीमत आती है उसको अमर फॉलो करेंगे तो हमको भी खुशी होंगी। तो श्रीमत है कदम पे कदम चलने की बात। फिर बाबा ने कहा चेकिंग पॉइंट, चेकिंग तो करना पड़ेगा ना। चेकिंग क्या करना है कि इस बाबा मिलने के बाद इतना मिलन मेला मनाते हैं, तो मिलन मेला माना एक ही बार बाबा के बनते हैं, या तो एक ही बार बाबा के मिलन में आती, उसकी बात नहीं है। मिलन मनाना माना सदैव हमारा मिलन बाबा से होता है। तो बाबा कहते हैं कि मेले में कितनी प्राप्तियां की है आपने, अनुभव कितना किया, और हमें कहाँ जाना, हमारी मंजिल कौन सी है, संपन्न बनने की मंजिल है, संपूर्ण बनने की मंजिल है। तो अपने को देखना है कि हम अभी कहाँ है, भले 20 साल हुआ, 30 साल हुआ, 10 साल हुआ, 5 साल हुआ, हमारी मंजिल कितनी दूर है हमसे और हम कहाँ रुके हुए हैं। अगर हम वो चेकिंग करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं। तो अगर हम चेकिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम अपने में खुश रहेंगे और कमियां निकलेगी नहीं। तो अपने को भी देखना है कि हम कहाँ रुके हुए हैं और मंजिल से हम कितने दूर हैं, कितने पास है। अगर हम वो देखेंगे तो हमें आगे भी मंजिल का पता भी पड़ेगा और कैसे हमको वो जो मार्जिन है उसको कवर करना है वो मालूम पड़ेगा। तो चेकिंग करना है कि बाबा ने जो हमें बताया है कि हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, और हमको सीट लेना है, राज्य अधिकारी बनना है, या तो हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी नंबर है, 8 नंबर, 108 नंबर है, 16108, तो हम कहाँ पर रुके हैं। तो हम जो अपने को अगर चेक करेंगे तो हम और ही आगे नंबर ले सकते हैं। एक बार मुझे याद आती है, तो एक बार है ना, तो एक बहन ने ऐसा बताया था कि हम है ना तो सब हम तो बहुत पीछे आए हैं, तो हम कैसे आगे जा सकते हैं। तो उन्होंने बताया हम ऐसा करते हैं कि जो भी हमारे आसपास आते हैं उसको हम देखते हैं कि अगर उसने गलती की तो हम वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उसने गलती की तो उसका नंबर हमारे से पीछे हो गया। इसलिए हम है ना जो भी गलतियां करते हैं वो नहीं करेंगे, तो हम उसके लिस्ट में आगे जाएंगे। तो हम सबकी गलती देखते और हम नहीं करते, लेकिन हम सबकी विशेषता भी देखते हैं कि गलती एक होती है, विशेषता बहुत होती है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है। सौ सौ उसने अच्छा काम किया है लेकिन एक अच्छा काम नहीं हुआ है, तो हमारा ध्यान उसमें जाता है, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार हमारे पर काम करते हैं। बाबा कहते हैं कि फिर बाबा ने जो मुलाकात की है वो टीचर से मुलाकात की है बाबा ने, तो टीचर्स को क्या कहा, बैलेंस रखने का। तो अगर बैलेंस रखेंगे तो क्या होगा, ज्ञान और योग में बैलेंस रखेंगे तो ब्लेसिंग मिलेंगी, लेकिन ब्लेसिंग मिलेंगी, लेकिन बाबा कहते हैं अगर बैलेंस नहीं है तो वरदान भी नहीं मिलेगा। बैलेंस होगा तो वरदान मिलेगा, और वरदान मिलेगा तो क्या होगा, वरदान मिलेगा तो वरदान कितना, किसी का वरदान मिल गया तो उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बैलेंस, हर कर्म में बैलेंस रखो, सेवा का हो, योग का, ज्ञान योग का, हर प्रकार का बैलेंस बाबा ने बताया, वो सब बैलेंस रखो। दूसरा है कि बाबा ने उसको कहा कि क्योंकि टीचर्स और जो भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे सभी टीचर्स हैं। क्यों टीचर्स हैं, क्योंकि वो कहीं भी जाते हैं तो किसी न किसी को ज्ञान देते ही है। तो ऐसा नहीं कि सेंटर्स में रहते हैं वही मतलब कि सुना सकते, सब सुना सकते हैं। बाबा ने तो खुली छुट्टी दी है ना कि भाई मंदिरों में जाओ, ट्रेन में जाओ, बाबा ने कितनी बातें बताते हैं। तो जो भी, तो सदा एक बाप और एक स्थिति, स्थिति बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी बातों में हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। तो अगर स्थिति पर हम ध्यान देते हैं कि सुबह में अमृत वेले जब उठते हैं तो अमृत वेले से हम एक निश्चय कर ले कि आज मुझे कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होना है, कुछ भी हो जाए। तो अगर हमने निश्चय कर लिया ना तो उसमें एक्सीडेंट तो होंगे लेकिन कम होंगे, धक्के तो लगेंगे क्योंकि संस्कार काम तो करते हैं, लेकिन हमको मालूम रहेगा कि अरे मैंने तो ये संकल्प किया था, क्या हो गया। तो दूसरे दिन और ज्यादा ध्यान रखेंगे तो हमारा एक्सीडेंट कम होगा। तो एक्सीडेंट बहुत जो होता है तो क्या होता है, गाड़ी कैसी हो जाती, तो ये आत्मा भी गाड़ी भी उसमें भी बहुत नुकसान होता है। तो सदा एक बाप, एक स्थिति और एक मत होकर चलना। अगर जहां एक मत होगा वहां ही वो सफलता मिलती है। एक ऐसा बोलता है, एक दूसरा ऐसा बोलता है, तो उस सफलता नहीं, कितना भी बड़ा काम हो लेकिन अगर एक मत होकर के चलते हैं तो इसमें सफलता मिलती है, बाबा ने टीचर्स के बताया था। फिर बाबा ने यह भी बताया कि टीचर्स को आजकल है ना बहुत सारा कार्य भी होता है, बहुत सारी बातें भी होती है, तो उनके लिए कहा था कि आपको क्या करना, हल्का रहना है, हल्का रहेंगे, लाइट रहेंगे तो हर काम सहज हो जाएगा। फिर बाबा की जो पार्टियों से मुलाकात थी, पार्टियों से मुलाकात थी, उसमें बाबा ने बताया संगम की विशेषता बताई। संगम की विशेषता बहुत श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ बच्चे हम हैं, बाबा के बच्चे बन गए, श्रेष्ठ युग है, तो हमें सदा स्मृति रहनी है कि हम संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। फिर बाबा ने बताया कि पुरुषोत्तम युग में हम हैं, पुरुषोत्तम युग में आप किसी को भी पुरुषोत्तम युग की बात बताएंगे तो किसी को मालूम ही नहीं, कितने बड़े बड़े विद्वान हो, पुरुषोत्तम युग क्या है मालूम नहीं है उनको, मतलब कि यथार्थ रीति से मालूम नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि हमें नशा होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम युग के पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे हैं। फिर बाबा ने, मैंने पहले भी बताया कि हमको साक्षी होकर देखना है, क्या देखना है, जो भी कोई कर्म कर रहा है तो हमें उसमें उसकी एक्शन देकर के उलझना नहीं है, हमें क्या करना है, साक्षी होकर के देखना है। लेकिन जहां नुकसान होता है वहां साक्षी होकर देखने की बात नहीं है, हर जगह पे ऐसी प्रकार की बातें नहीं, लेकिन साक्षी इसलिए कि कोई आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, या कहीं भी कुछ भी हो रहा है, हमारा कंसल्ट ही नहीं है तो हमें उसको कुछ भी करने की जरूरत, साक्षी होकर देखना है। फिर बाबा ने मुरली में कहा था, याद एक बात याद रखनी है, सदा यही याद रखो कि बाबा हमेशा कहता है जो पाना था सो पा लिया, जो पाना था सो पा लिया, अभी कुछ बाकी नहीं है। इसलिए हमारे बाबा हमेशा कहता है अभी हमारे पास टाइम इतना है नहीं, आपको मालूम होगा, आप तो बाहर की दुनिया में रहते हो तो आपको पता होगा कि कितना टाइम है, कितना नाजुक समय चल रहा है, कभी क्या भी हो जाए वो भी मालूम नहीं, हमारे शरीर का भरोसा नहीं है। कल अभी यहाँ जो भी स्थिति में हम बैठे हैं, जो भी हालत है हमारी है, घर की है, कहाँ की भी है, उस हालत में ही हमको आगे नंबर लेना है। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में आज थोड़ा बुखार है तो मैं ऐसा करूँ अच्छा हो जाऊंगा तो मैं पुरुषार्थ करूंगा, नहीं, जो स्थिति में जैसे हैं, क्योंकि कल आयु जैसे बढ़ जाएगी वैसे हम कब कर सके नहीं कर सके क्या पता, तो हमारे अभी वर्तमान ही हमारे लिए सब कुछ है। तो पा लिया, जो प्राप्ति चाहिए वो अभी ही करने का टाइम है। दूसरा है कि अनुभव की अथॉरिटी, जितनी जितनी बातें हमारे सामने आती है, पास्ट की बातें भी आती है, पास्ट की दुखदायक बातें बहुत याद रहती है, तो पास्ट की बातों को हमें क्या करना है, उसका लेसन लेकर के सीखना। अनुभवी, इस यज्ञ में हमने देखा है कि कितने अनुभवी हो जाते हैं, उसके अनुभव से हम सीखते हैं, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी होती है, ऐसी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के आगे कोई भी अथॉरिटी काम नहीं करती है, अनुभव की अथॉरिटी। कितना भी ज्ञान सुना लो आप लेकिन अनुभव नहीं है, तो अनुभव के बिना तो व्यक्ति, अनुभव ऐसा है कि जैसे भोजन बनाते हैं उसमें आपने देखो, कोई व्यक्ति को कितनी भी रेसिपी की बुक दे दो लेकिन वो सालों से बनाते हैं, उसका और उसका अंतर होता है ना। कोई व्यक्ति कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी अच्छा हो गाड़ी चलाने के लिए, एक साल से सीखा है लेकिन 50 साल से जो गाड़ी चलाता है उसमें और उसमें कोई अंतर होता है? तो अनुभव की अथॉरिटी बनो। फिर बाबा ने इनकम टैक्स ऑफिसर को भी बात किया था, इनकम टैक्स ऑफिसर को ये बात बताई कि आप देखो बाबा के बच्चे हैं, घर में आए हो तो घर आपका है, बाप तो दाता है, तो बाबा के घर में आए हो, अपने घर में आए हो, लेकिन आप लोग क्या चाहते हो, देश के नेता क्या चाहते हैं कि ये देश लाइट हाउस बने, आध्यात्मिक सेवा केंद्र बने, ऐसा आप चाहते हो तो उसके लिए एक पाठ पक्का करो। ये पाठ ऐसा है कि 5 साल का बच्चा भी यहाँ, ये विद्यालय ऐसा वंडरफुल है और वंडरफुल है, उसका एक ही काम है चरित्रवान बनना, तो एक ही पाठ है। अगर बाबा कहते हैं ये कैसा वंडरफुल विद्यालय है जिसमें 5 साल का बच्चा भी है, पोता भी पढ़ता है, दादा भी पढ़ता है, बाप भी पढ़ता है, माँ भी पढ़ती, दादी भी पढ़ती, सब प्रकार के लोग पढ़ते हैं और सभी से मतलब कि हर प्रकार की जो घर चलता है, ऑफिस चलता है, जो भी चलता है, क्योंकि पढ़ाई कैसी सोर्स ऑफ इनकम, ये पढ़ाई ऐसी है जो ये ज्ञान धन है ना, वो स्थूल धन को भी खींच के लाता है। उसकी एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। हम जब अहमदाबाद में थी तो हमारे सामने जो एक है ना, तो एक छोटी सी एक दुकान लेके बैठता था लॉरी में और 2-2 रुपया की चीजें लेके बैठता था, तो सब कहते थे आप 2-2 रुपया की इतनी चीजें बेचते हो, इससे अच्छा है आधा घंटा आप ज्ञान लो। उसने बोला नहीं नहीं मेरा आधा घंटे में मैं कितना कमाई कर लेता हूँ और मेरे खाने पीने का क्या होगा। तो एक बहन थी वहाँ, बहुत अच्छी बहन थी, उसने एक भाई को बोला कि तू आधा घंटा, तुम इसके ऊपर विश्वास कर सकते? बोला हाँ, आपके जितने भी भाई बहन है उसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता। तो उसको वहाँ खड़ा रखा और रोज ही उसने 15 दिन तक उसका कोर्स कराया, 15 दिन तक उसने कोर्स किया। उसके बाद है ना, तो थोड़े थोड़े टाइम में रोज रोज आता रहता था, सीखता रहता। उसके बाद मैं तो यहाँ आ गई, मालूम नहीं है मैं 15-20 साल के बाद वो मधुबन में आया, तो उसने मुझे पहचाना, मुझे बोलता है बहन जी आप अहमदाबाद में थे क्या? मैं को हाँ। तो बोला मेरे को पहचानते? मैं तो नहीं पहचानती हूँ, क्योंकि वो तो बहुत अलग प्रकार के बड़े लगता था, मैं नहीं पहचान। बोला आपको पता है कि राज्य सेवा केंद्र के सामने एक 2-2 रुपया की जो चीज़ें मैं बेचता था? मैं को मैं नहीं। तो क्या अभी मेरी दुकान देखो, 15 दुकान है स्टील के और उसमें भी मैंने 15-20 लोगों को रखा है, आज मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये किसकी देन है? भगवान की देन है। तो ज्ञान धन उस धन को भी लाता है। तो बाबा ने फिर राजस्थान की भी बात की है। राजस्थान में जो रहते हैं तो आपका हेड क्वार्टर देखो राजस्थान में है और राजस्थान में तो राजाएं होते हैं। तो बाबा ने बोला तो आप तो हीरे हो ही, लेकिन कितने हीरे आपने, कितने हीरे यहाँ लाए हो? तो फिर बाबा ने कहा कि आपको ये सेवा करनी है। दूसरी बाबा ने बोला कि जितनी जितनी, क्योंकि बाबा की सिस्टम चेंज होती है, आपको पता होगा कि पहले बाबा जो मिलते थे वैसे अभी नहीं मिलते हैं। पहले मिलते थे तो 24-24 घंटा बच्चों के साथ रहते थे बोर्डिंग में, जब बच्चे थे, शुरुआत की बात है। उसके बाद भी यहाँ 12-12, 24 बहुत घंटे तक बाबा रहते थे, परिवर्तन हो गया। बाबा ने बोला जैसे वृद्धि, जो बाबा के बच्चों की वृद्धि हो जाएगी, वैसे वैसे विधि भी चेंज होती रहेगी। आज तो बाबा के समीप मिलते हो, 84 की जो मुरली में बाबा के सामने मिलते थे बाबा के साथ, मतलब कि वहां मिलते थे बाबा, 15-15 मिनट एक एक के साथ बात करते थे। तो बाबा ने फिर बोला कि जैसे विधि वृद्धि होंगी, विधि चेंज हो जाएगी, उसके बाद तो दर्शन मात्र रह जाएंगे। दर्शन मात्र माना, अभी आप हम देखते हैं कि इसे वीडियो देखते हैं, तो वीडियो देखते और वो लोगों ने जिन्होंने इतना पाया है उनका अनुभव, और अभी जो वीडियो में देखता है उसका अनुभव, कुछ अंतर तो होगा ना, उतना समीप का अनुभव। तो बाबा ने राजस्थान के लिए भी ये बात बताई, और फिर बाबा ने बताया कि माया के झूले में नहीं झूलना है। माया के झूले में झूलते हैं तो क्या होता है, माया के झूले में झूलना माना सो जाना नहीं है। चलो आज नहीं कल है, इतना काम है, अभी कुछ नहीं करना है, क्लास में नहीं जाना है, अभी वीडियो ये अभी तो मोबाइल पर मुरली आती है सुन लो, इसमें क्या अंतर पड़ता है, ये जो हमारे संकल्प होते हैं ना वो हमको माया के झूले में झुलाते। अपने को हम समझा लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। बाबा कहते संगम युग में अपने से ऐसे समझौता नहीं करना जो हमारे भाग्य पे लकीर लग जाए, इसलिए हमें अपने भाग्य को बनाना है। तो भाग्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बाबा जो हम क्यों कह रहा है उसकी श्रीमत होती है, और आज भी हमने बताया कि श्रीमत तो बहुत होती है, लेकिन बाबा की श्रीमत जो रोज मुरली में आती है, जो रोज मुरली में आती है उसमें बहुत नहीं होती, एक या दो ही होती है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे, चार पेज की मुरली को भी एक तरफ रख करके जो बाबा ने कहा है वही हम एक ही बाबा का एक ही महावाक्य को पकड़ करके हम अगर उसको फॉलो करेंगे तो भी हम संपन्न बन जाएंगे। ॐ शान्तिः।